Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namaha. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Siddham Suddham Panamiya Jinindavarane Michandamakalankam. Gunarayana Bhusanudayam. Jivasa Paruvanam Ucham. आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड ये ग्रंथ है। कल से हमने इसका स्वाध्याय शुरू किया था, अभी हम पृष्ठ संख्या 5 पर आ गए हैं। सामान्य प्रकरण ले रहे हम यहाँ पर। ये देशी भाषा में ये टीका क्यों लिखी, इस संबंधी चर्चा समाधान हो चुका है। अभी यहाँ दूसरा पैराग्राफ जो है तीसरा, वहां से पढ़ेंगे हम। इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गोमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषा में ही टीका करने का निश्चय किया है। सो श्री अरिहंत देव जिनवाणी और निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से, कोई किसी को कोई प्रसाद देता नहीं है परंतु हम उनको अपना आदर्श रखते हैं सामने, तो ऐसे विनय से कहने की पद्धति कि उनके प्रसाद से और मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो, क्योंकि हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो उनके आशीर्वाद से उनके प्रसाद से हमारी ये कार्य की सिद्धि हो जाए, ऐसी भावना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं, क्योंकि इनका नाम सुनकर ही जीव दूर भागते हैं, इसलिए इस विषय में और इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख कराने की यहाँ कोशिश करते हैं। हे भव्य जीव, पहले ही भव्य करके हम सबको पुकार रहे हैं, तुम अपने हित की वांछा करते हो। हर जीव अपना हित चाहता है परंतु हित किस में है इसका पता नहीं है, तो हित के लिए विषयों के पीछे दौड़ता है परंतु उसमें तो कुछ हित भासित नहीं होता है, उल्टी तो वो चाह बढ़ती चली जाती है। तो तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जैसे बने वैसे ने कितने भी तकलीफ होए तो भी, पहले ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आता तो भी, जैसे बने वैसे यानी अत्यंत प्रयत्न पूर्वक भी इस शास्त्र का अभ्यास करना। क्यों? अपने हित को चाहते हो तो कौन नहीं चाहेगा, तो सब कुछ सब लोग चाहते हैं। अभी उसका कारण बताते हैं, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है, हर एक को मोक्ष की प्राप्ति में ही परम हित है। मोक्ष के बिना अन्य जो है, मोक्ष के अलावा अन्य जो कोई चीजें है इस विश्व में, वह पर संयोग जनित, पर पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुए, उसको कहते हैं पर संयोग जनित, विनाशिक यानी नाश होने वाला है और दुखमय है। हम जो कोई संयोग देखते हैं वो तो पर संयोग से उत्पन्न हुई जो बातें हैं, या उस जो सुख है जिसको हम कहेंगे इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख कैसा है? एक तो कर्माधीन है, दूसरी बात विनाशिक है, कम ज्यादा होता है, बाधा आती है उसमें, और दुखमय है। और मोक्ष है वही निज स्वभाव है, वो तो आत्मा का अपना स्वभाव है। आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है और उस स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में होती है तो हम कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष है वही निज स्वभाव है, वो कैसा है? अविनाशी है। पहले जो मोक्ष के बिना जो अन्य था उसको क्या कहा? पर संयोग जनित। और ये मोक्ष है वो निज स्वभाव। पर के संयोग तो हम ला नहीं सकते, तो ये तो पराधीन हुआ ना, और ये निज स्वभाव है तो मोस्ट यानी बिल्कुल स्वाधीन है। दूसरा विशेषण वहां लगाया था विनाशिक है, और यहां लिखते हैं अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता ऐसा है। वहां कहा था दुखमय है, और यहां अकेला सुखमय नहीं कहा, क्या लिखा उसके पहले? अनंत सुखमय है। इसलिए मोक्ष पद प्राप्त करने का उपाय तुमको करना चाहिए। मोक्ष कहीं बाहर से लाने की चीज नहीं है, वो अपने ही पर्याय में प्रकट होता है। तो ये जो मोक्ष की पर्याय प्रकट होनी है तो वो प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। सो मोक्ष का उपाय क्या है तो वो खुद ही बता रहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जिसको हम रत्नत्रय कहेंगे, जिसको मोक्ष मार्ग कहेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इनकी प्राप्ति, इनके यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति जीवादि का स्वरूप जानने ही से होती है। जीवादि का स्वरूप यानी जीवादि 6 द्रव्य है, जीवादि 7 तत्व है, 85 का है, तो इनका स्वरूप सही पद्धति से जानकर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि जीवादि का स्वरूप नहीं जाने और बस हमने तो ध्यान लगाया और ओम नमः सिद्धेभ्यः कह दिया तो हो जाएगी ना प्राप्ति? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जीवादि पदार्थ कौन से है, उनका स्वरूप क्या है, वो भली भांति जानना ही चाहिए। जैसे हमने वो सारे देखे ना सिद्धांत प्रवेशिका में भी हमने सीखा है, वो सामान्य गुण क्या है, द्रव्य का स्वरूप कैसा है, उसका कभी विनाश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसके परिणमन के लिए कौन से अन्य द्रव्य की या ईश्वर की जरूरत है ना, किसकी जरूरत है? द्रव्य को परिणमाने के लिए, स्वयं का परिणमन करने के लिए अन्य किसी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो ये होती है या ये नहीं होती है तो हमें नक्की करना पड़ेगा पहले में पहले।
देखो
निमित्त से, हाँ,
यहाँ पर एक बात विशेष ख्याल में आपके आई ही होगी। यहाँ क्या बता रहे हैं, तुमको जैसे सेकंड लाइन इसी पैराग्राफ के ऊपर से दूसरी या पहले लाइन से ले लो, हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो, यानी किसको बता रहे हैं कि जिसको हित की वांछा है, हित क्या है? मोक्ष है, बराबर। अब कह रहे तुमको जैसे बने वैसे द्रव्यानुयोग शास्त्र का अभ्यास करो, ऐसा लिखा ना? क्या लिखा अरविंद भाई? इस शास्त्र का। कौन से शास्त्र का? कर्णानुयोग का जो शास्त्र कहा जाता है तो अभी वैसे देखा जाए तो जीव शास्त्र है ये
तो जीव कांड है ना,
की बात है।
हाँ, जीव की
और
बात
हम
है
तो केवल वो उसमें कुछ कर्म आया ये आया तो घबड़ जाते हैं। यहाँ तो कह रहे इस शास्त्र का अभ्यास करो, क्यों? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है। यानी ये बताना चाहते हैं जो जिनेन्द्र भगवान है, जो चारों ही अनुयोगों का कथन अपने जिन मतलब दिव्य ध्वनि के द्वारा कर रहे हैं, तो केवल द्रव्यानुयोग का ही उपदेश देंगे कि नहीं बेन? कितने अनुयोग आएंगे साहब? चारों ही आएंगे, उसमें कर्णानुयोग होगा कि नहीं? और उससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है ऐसा बता रहे। और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होगी ये तो अपना प्रश्न है। तो कहते हैं इनकी प्राप्ति जीवादिक का स्वरूप जानने से। जीवादिक में किसको लेना? जीव को भी लेना और जीव के अलावा अन्य को भी लेना। ख्याल में आया भाई? एक एक जो क्या कहते हैं इसमें पैराग्राफ है, वाक्य है, इतने जबरदस्त है कि हम उसको इतने डिटेल में देखने जाओ तो कम से कम 4 साल लगेंगे।
ये जो 2 पैराग्राफ है ना, वो बार बार पढ़ना इसको, 10 दिन तक रोज पढ़ना एक बार।
नहीं ये तो ऐसा है, ये पूरा जो पीठिका है ना बहुत ही पढ़ने लायक है, आप घर में भी पढ़ के आइए,
वो सरल है और
एकदम, और फिर दोबारा यहाँ पढ़े और घर में जाके पढ़ो, तो हमें जो अर्थ भाषित होता है उससे भी आपको अधिक होगा, ख्याल में आया?
देखो अपनी ज्ञान की योग्यता बढ़ती चली जाती है और इसमें तो सातिशयता हो जाती है ज्ञान में भी, तो हम पढ़ेंगे शब्द तो वही के वही है परंतु उसमें गहराई से अर्थ भाषित होने लगेगा अपने आप को। कोई समझाता है और हम समझ जाते ये बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान की पर्याय प्रत्येक अपनी योग्यता से होती है। तो भले सामने कोई कहने वाला होगा बताने वाला और सामने शास्त्र है, तो ये तो हमारे घर में हमारे साथ है, तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें से और अधिक से हमारे पकड़ में आती है बात। देखो अभी आगे बताते हैं, ये जीव कांड है ना, तो जीव का ही बहुत विस्तार से वर्णन है इसमें, आगे चलकर अंत में लिखने वाले हैं, ये जीव कांड को पढ़कर ज्ञान कांडमय हो जाओ और फिर अपने को जानकर मोक्ष की प्राप्ति करो। अभी इस पुस्तक में नहीं, ये तो छोटे है ना, दूसरे पुस्तक के अंत के पेज पर ये लिखा है। वही कहते हैं जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कहीं सुना है आपने ऐसा लिखा हुआ? हाँ सुशीला बेन, जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में ये सूत्र लिखा है। तो यहाँ वही बात बताते हैं कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे बिना जाने श्रद्धान का होना, जीवादि पदार्थों को जीवादि तत्वों को जाने ही नहीं और उनका श्रद्धान हो जाए, ये कैसा है? आकाश के फूल के समान है। ये कौन से कलर का होता है आकाश का फूल? हाँ मोल, आकाश में फूल ही नहीं होता, आकाश का कोई फूल नहीं होता। हाँ
यहाँ ऐसा कह रहे हैं, हे फूल आकाश में फूल ही नहीं होता।
यानी जीवादि पदार्थों को तत्वों को नहीं जानेंगे तो उसका श्रद्धान भी नहीं हो सकता। तो श्रद्धान होने के लिए पहली आवश्यक कंडीशन है उसको जानना चाहिए। तो कहते प्रथम जाने, कैसे जानेंगे हम? आगम से जानेंगे, क्योंकि जानने के लिए भी एक कंडीशन है, जो जिनेन्द्र भगवान ने बताए है वही जीवादि तत्व, क्योंकि अन्य मति भी अपने अपने तत्व बताते हैं, परंतु ये भगवान तीर्थंकर ने जो तत्व बताए हैं उन तत्वों को जैसा उन्होंने स्वरूप बताया है वैसा जानेंगे। तो कैसा जानेंगे? तो एक ऐसी सुविधा है कि तीर्थंकरों का तो उपदेश होता है, तो उसमें तो पूरा ही वस्तु स्वरूप बताया जाता है, तो जीवादि तत्वों का कथन उनकी वाणी में आया है, गणधरों ने उसको जाना और आगम की रचना की, और वो आगम अभी तक हमें परंपरा से, गुरुओं के परंपरा से आज तक हमें उपलब्ध है। तो पहले में पहले उनको हम जानेंगे, कैसे जानेंगे? आगम से, शास्त्र में से जीवादि का स्वरूप हम जानेंगे पहले। ये जानना है, ये ज्ञान ऑर्डिनरी, जैसे हम पुस्तक पढ़ा और हमने आत्मा संबंधी जाना, आत्मा को नहीं जाना है, अपने को अभी जाना नहीं है, अपने संबंधी जीव संबंधी हमने बहुत विस्तार से जान लिया, सभी जीव अजीव सभी पदार्थों के बारे में हमने विस्तार से जान लिया। अब कहते हैं प्रथम जाने पश्चात वैसी ही प्रतीति करके श्रद्धान को प्राप्त होता है, श्रद्धान को प्राप्त होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे उसने जाना है वैसी प्रतीति करना। तो प्रतीति कैसे की जाती है? तो जो हमने सुना है तो क्या है, हम उसी ऐसा ही है इस निर्णय तक पहुंचे हैं कि नहीं है? तो पहले तो वैसा निर्णय होगा और फिर वैसा ही भासित होगा, तो उसकी प्रतीति होगी, तब उसका उसको कहेंगे सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव होगा और उसी समय वही समय है सम्यक दर्शन का, तो श्रद्धान को प्राप्त होता है। इसलिए जीवादि का जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होता है। क्या कहते हैं? पहले जानना होता है पश्चात श्रद्धान होता है। ये जानना कौन सा जानना है? आगम से जानने को यहाँ वो भी जानना ही है, जैसे हम विश्व में कितने द्रव्य है, तो आपने जाना कि नहीं जाना उसको? आप कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य, मैं स्वयं आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, ये भी जान लिया ना आपने? तो आत्मा का अनुभव है? हमसे नहीं है, परंतु अभी समय दर्शन नहीं है, परंतु ये आपने जाना ना कि मैं जीव द्रव्य हूँ? कैसे जाना? हमने तो आगम से जाना है। तो पहले जीवादि का जानना हुआ, श्रद्धान होने के पूर्व में ये जानना होगा। इस जानने में अगर वो गलत जान रहा है तो श्रद्धान भी नहीं होगा, यानी सम्यक दर्शन नहीं होगा। गलत श्रद्धान तो चल रहा है अनादि से, उसकी बात नहीं है। जैसे भगवान ने बताया है पहले वैसे जानेगा, ये जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होगा, यानी वो आवश्यक कंडीशन हो गई ना उसकी। इसीलिए देशना लब्धि को पहले लेते हैं। देशना जो है भगवान का उपदेश, भगवान ने बताया हुआ मार्ग का उपदेश, भले भगवान के मुख से सुनो, आचार्यों के मुख से सुनो, या अन्य कोई ज्ञानी के मुख से सुनो। तो जीवादिक का जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होता है, वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण जानना। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले में पहले क्या करना पड़ेगा? जीवादिक तत्वों को जानना पड़ेगा।
तथा देखो, हमारे प्रश्न मन में ऐसा हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है कि हमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है, लेकिन उसकी विधि कहीं दिखाई तो नहीं देती है, कोई बताता भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर पेज पर उसकी विधि बताई जा रही है। अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वहां यही लिख रहे हैं, प्रथम क्या करें? खाना खाए। हाँ जी, प्रथम क्या करने को कहा? जाने। किसको? कि कौन से थिएटर में, कौन सा सिनेमा में, कौन सा पिक्चर लगा है, वो जाने। तो कहते हैं जीवादिक तत्वों को जाने, और जाने तो प्रतीति हो जाए। अरे तुम कितने दिन से जाते हो भाई? बोले 14 साल 15 साल से मैं जाता हूँ। अभी तुम्हारा अभ्यास पूरा नहीं हुआ, क्या सीखते हो वहां? अरे तुम जब तक जानो जब तक तुम्हारा श्रद्धा सही नहीं होता है। तो कह रहे प्रथम जाने, और उसके बाद क्या करे साहब? पश्चात वैसी ही प्रतीति करके, यानी ये ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं करता, ये जब तक श्रद्धा नहीं होता है। पर पदार्थों को क्यों जानना? अरे उनमें स्वयं में अपने स्वयं की परिणति करने की क्षमता है। ये पुद्गल है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञान ही नहीं है, तो वो कौन सा कार्य करेगा? घबरा मत, विश्व का स्वरूप ऐसा है कि वहां उनमें अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करने की शक्ति है वस्तु तो गुण के कारण, और वह निरंतर कार्य होवे ऐसा द्रव्य तो गुण बताएगा। यानी यहाँ वस्तु व्यवस्था इतनी सहज सरल और सुगम है, हम ही डोट डाया है, क्या बोलते आप लोग, डेढ़ सियाने हैं, ये क्या जानते हैं? इसको कुछ समझता नहीं, मैं सिखाऊंगा तुरे को। अरे कोई किसी के सिखाने से समझता हो तो तीर्थंकर के पास सभी को शायिक सम्यक तो होना चाहिए था, सम्यक दर्शन तो दूर, शायिक सम्यक तो होना चाहिए था, ख्याल में आया? तो यहां तो कह रहे हैं कि पश्चात वैसी ही प्रतीति करके, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसे सात तत्व आचार्यों ने या जिनधर भगवान ने बताए हैं, वैसा श्रद्धान को प्राप्त होता है, और ये प्राप्त श्रद्धान को प्राप्त होता है यानी सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होता है। यानी देखो, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था कि यहाँ श्रद्धा की बात है, लेकिन वहां बताएंगे ज्ञान के माध्यम से, पहले जाने का उसके अपेक्षा से कथन किया था चौथे अधिकार में, वही बात यहाँ बता रहे हैं। तो वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण है। श्रद्धान होने के पूर्व में जानना होता है, ये बात नक्की करो। किसके? विख्यात भी क्या आगे
देखो, यहाँ जीवादिक कहा, जीव को ही जानो, अपने को ही जानो, ऐसा लिखा है ना? जीवादि के समस्त पदार्थों को, जितने पदार्थ है इस विश्व में, छह पदार्थ है, छह द्रव्य है, तो छह द्रव्य है इसे पहले नक्की जानना पड़ेगा और उसका निर्णय भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं पांच हो सकते हैं या दो ही हो गए, ये धर्म अधर्म क्या चीज है, वो कहीं दिखाई तो नहीं देता है, तो हो गए कि नहीं हो गए, तो उसको प्रतीति नहीं है, अभी उसके शंका चल रही, उसका कंफ्यूजन चल रहा है। तो भगवान का स्वरूप निश्चित करते हैं तो भगवान ने बताई हुई बातें ऐसी ही है, ऐसे दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। तो इस विश्व में छह द्रव्य है और वो हर एक द्रव्य का कैसा स्वरूप है वो पहले निश्चित करेंगे। तथा यानी ये श्रद्धान का कारण क्या बताया, जानना। जानना पहले होगा, बाद में श्रद्धान होगा। अब आगे और कुछ बता रहे हैं। तथा श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है, क्या श्रद्धान होने के बाद भी जीवादिक का जानना होता है? हा? नहीं होगा। पहले तो उसने आगम से जाना था, उसको भी जानना कहते हैं। अब कैसे जाना है? स्वानुभव से जाना है। पहले मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा पोपट पोपट पोपटिया चलता था, अभी उसने जान लिया ना, अभी आत्मा को जाना उसने। पहले आत्मा संबंधी जानकारी हासिल की थी, अब डायरेक्ट आत्मा को उसने जान लिया है। तो श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। पहले उतना ही जान रहा था, अब भी उतना ही जान रहा है। पहले छह द्रव्य जाने और अभी कुछ सात आठ द्रव्य जाने, ऐसी बात तो है ही नहीं है, परंतु अभी आत्मा को जाना है, अपना अनुभव लिया है, पर पदार्थों से, शरीर से, राग से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव उसने, यानी स्वानुभव से वो आनंद चख लिया उसने। तो अभी जो उसका जानना है उसका नाम क्या होगा? सम्यक ज्ञान। श्रद्धान होने के पहले भी जानता था, वो सही जानता था, फिर भी उसको सम्यक ज्ञान नाम नहीं था, परंतु वो आवश्यक है, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होते ही अभी आत्मा को भी जान लिया है, और ये जो जीवादिक पदार्थों को पहले आगम से जानता था वही तो जानना चला। अभी सम्यक दर्शन हुआ तो आत्मा के अनंत गुण को एक दो तीन चार ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिए उसके, आत्मा के प्रदेश कुछ दिखे नहीं उसको। सूक्ष्म ज्ञानी है, उसके और कुछ नहीं ख्याल में आए, बस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उसने अनुभव में ले लिया। तो जो जाना था उस पर अभी मोहर लग गई, सम्यक दर्शन हो गया उसको। अभी उसके जानने को क्या कहेंगे हम? सम्यक ज्ञान कहेंगे। बात ख्याल में? जानना तो पहले भी था, जानना तो, क्योंकि जानना तो चले ही गए। यदि पहले वाला जानना सही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो हम तो पहले में पहले लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ जानना बिना तो वो तो चलेगा, पहले पहले ध्यान कर लो, अपने आत्मा का अनुभव कर लो, परंतु वो बात नहीं हो सकती। ये बात यहाँ बताने चाहते हैं खास, कि श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। यानी श्रद्धान होने पर यानी आत्मा के अनुभव के काल में कुछ उसने एक्स्ट्रा तो जाना नहीं है, बस अपना अनुभव नहीं था, अभी वो अनुभव हुआ है, और पहले जो आगम से जाना था वही ज्ञान अब भी है, परंतु अब उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। पुनश्च श्रद्धान पूर्वक जीवादि जानने पर स्वयमेव उदासीन होकर, अभी श्रद्धान भी हुआ है और जीवादि का जानना भी उसके है ही है, तब स्वयमेव उदासीन होकर, उदासीन होकर यानी मुंह लटका कर, वो बात नहीं है, उसके बाह्य अन्य पदार्थों की रुचि कम हो जाती है, हेय का त्याग करता है। हेय का त्याग में किसको? बाल बच्चे धन संपत्ति किसको त्यागता है? हाँ जया बेन, हेय का क्या, हेय किसको कहा? हाँ बहुत अच्छा, विभाव भाव राग द्वेष के परिणाम। तो हेय का त्याग करता है।
अरे राग द्वेष के परिणाम कहने से समझ में नहीं आता है, पाप के परिणाम और पुण्य के परिणाम भी
तत्वों में, बोलो तत्वों में। हाँ, आश्रव बंध वो हेय तत्व है। तो हेय का त्याग करता है भी कहें की पद्धति होता है, उसने ऐसा किया, एक कथन पद्धति है ना। तो हेय का त्याग करता है, उपादेय का ग्रहण करता है, तब सम्यक चारित्र होता है। तो क्या पहले सम्यक दर्शन हुआ, बाद में सम्यक ज्ञान हुआ, थोड़े काल के भी बाद सम्यक चारित्र? ऐसा नहीं है, तीनों का समय एक है। परंतु यहाँ विशेष आत्मस्थिरता होती है तो विभाव उनका उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे वो चारित्र की स्थिरता बढ़ गई। तो जिसको मुनियोग्य चारित्र कहते हैं तो वो तो पश्चात हो जाता है। फिर भी सम्यक चारित्र कब से होता है? जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान और उसी समय सम्यक चारित्र है। फिर भी कारण कार्य की अपेक्षा पहले और बाद में बताते हैं। अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। अब ये अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड, अभी हम मुनि योग्य चारित्र की बात करेंगे यहाँ पर। तो मुनि की जो कोई उनके जो आचरण है, उनके जो कोई डेली रूटीन होता है ना उनके, जो कि वो क्या क्या करते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं। तो हमने आगम से पढ़ लिए सब, और किसी अन्य मुनियों को भी देखा तो किसी जीव को ऐसा मैं भी मुनि हो जाऊं। अभी तो उसके जीवादिक का श्रद्धा नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, फिर भी क्या किया उसने, मुनि जैसा आचरण शुरू किया, उसको यहाँ क्रियाकांड कहा है। और वो कैसे करे? अज्ञान से। आत्मा की बात पता ही नहीं है और वो राग यानी जो शुभ राग कर रहा है और उसी से मोक्ष होगा ऐसी उसकी मान्यता है, उसको कहते अज्ञान से किया हुआ क्रियाकांड। तो उसको कभी ना कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा? जब तक अज्ञानी है तब तक नहीं होगा। यानी क्रियाकांड करने से तो कुछ किसी का कुछ नहीं होगा, तत्व निर्णय करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। इस तरह जीवादिक को जानने ही से ही लगाया, ज्ञान ही से सब बातें होगी। जीवादिक को जानने ही से सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि में किस किस को लेना जाया बेन? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि मोक्ष के उपायों की प्राप्ति होती है। मोक्ष को प्राप्ति करनी है मोक्ष की, तो उसके उपाय की प्राप्ति करनी है, और उसके उपाय की प्राप्ति करने के लिए जीवादि पदार्थों को जानना है, जीवादि को जानना है, ऐसा निश्चय करना। पहले में पहले जानने की बात नहीं, पहले ये नक्की करो कि जीवादि को जानने ही से ज्ञान होगा, उसी से प्रतीति होगी, उसी से समय दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, और वो सम्यक चारित्र में अधिक स्थिरता से ही मोक्ष होगा। इस शास्त्र के अभ्यास से ये मूल पॉइंट पर आ गए। इस जीव कांड की बात यहाँ उठा रहे हैं समय ज्ञान चंद्रिका में। तो इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादिक का जानना यथार्थ होता है, क्योंकि संसार है वह जीव और कर्म के संबंध रूप है। हमने संसार किसको माना? पति पत्नी बच्चों के संयोग रूप माना। और संसार क्या है? जीव और कर्म के संयोग से संसार है। तथा विशेष जानने पर, विशेष जानने पर का अर्थ है डिटेल में जानने पर। पहले हमने ऐसा ही जान लिया था, जीव और कर्म बंधे हुए, बस इतना ही जान लिया। अब उसके डिटेल्स अगर जानेंगे तो इनका संबंध का जो अभाव होता है वही मोक्ष है। यानी कर्मों का पूर्ण, जिसको कहते हैं खिर जाना, नष्ट हो जाना, अनादि से ही बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और जब कर्म और जीव पूर्णता भिन्न हो जाते हैं, जीव इन इट्स प्योर फॉर्म रहता है, तो हम कहेंगे इसको मोक्ष हुआ। और इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। इन डिटेल बातें बताई है। एक होता है सामान्य स्थूल निरूपण, स्थूल कथन, और एक होता है इन डिटेल विशेष कथन। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना बच्चे को लेकर? कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में विशेष जानता है। तो लौकिक में तो हम बहुत सयाने हैं, जहां जाना है वो उसमें स्पेशलिस्ट है कि नहीं ये पहले देखते हैं। आंख की जांच करनी है तो कोई भी चलेगा कि नहीं चले? तो वहां तो बराबर देखेंगे क्या उसकी डिग्री क्या है, फिर किसी को पूछेंगे ये कैसे डॉक्टर है, हमको ऑपरेशन कराना है इनके पास से, क्यों भाई? हाँ, तो वहां तो हम बहुत अच्छे सियाने हैं, यहाँ क्या कहते हैं? इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। अथवा जीवादिक षड द्रव्य सात तत्व आदि का भी इसमें यथार्थ निरूपण है। क्या कहते हैं, ये भी सब इसमें बताया? हाँ बताया। अभी जो कोई देवलाली में आए थे, सम्यक तो मार्गणा ली थी, उसमें यही सब है ना, कितने द्रव्य है, हर एक का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो बहुत सारे विस्तार, उसमें कितने प्रदेश होते हैं, कितनी संख्या है, ये सब जो हम यहाँ सिद्धांत प्रवेशिका में सीखते हैं, वो सारी आगे सम्यक्त्व मार्गणा में। क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व कैसे होता है, तो जीवादिक को जानने से होता है, तो वहाँ पूरी विस्तार से वहाँ बात आई है। यथार्थ निरूपण है, इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब यहाँ कितने ही जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण, क्या कहते हैं, इसके एक करना नहीं होगा, कुछ काम का नहीं है, इसमें अरुचि होने के कारण। देखो, एक पर्सनल होते कि किसी विषय में रुचि होती, किसी में अरुचि होती है। जब अपने को अरुचि होते है तो सामने वाले को भी ऐसा कहते कि इसकी कुछ जरूरत नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, हम स्कूल कॉलेज में होते थे, हमको तो मैथ्स में जरा भी पसंद नहीं, अरे वो सिखाने वाला मास्टर ही खराब है। देखो हिस्ट्री वाला कितना अच्छा सिखाता है, ज्योग्राफी वाला तो बहुत बढ़िया, तो साइंस वाला ऐसा है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता है उसको हम सिखाने वाले को दोष देते हैं, अपने को उसमें अरुचि है। वैसे यहाँ कह रहे हैं अरुचि होने के कारण
विपरीत विचार प्रकट करते हैं, और ये अपने विपरीत विचार दूसरों को भी सिखाते हैं, तो दूसरा भी इसका अभ्यास करना चाहे तो वो भी
गल जाए। नहीं नहीं, बात ऐसी है, देखो भाई हम जो बोल रहे हैं ना, तुम्हें पसंद नहीं, ठीक है तुम अभ्यास मत करो, पर तुम अगर उसका निषेध कर रहे हो ना, तो तुम जिनेंद्र भगवान का निषेध कर रहे हैं, ये भूल गए, क्योंकि ये बात किसने बताई है? हाँ मिली भाई ने, जिनेंद्र भगवान ने बताई भाई, और हमें उसमें निषेध है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, विद्या का निषेध करेंगे तो हमको फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा कि नहीं? इस तरह से बिल्कुल ये क्यों बता रहे कि हमारा माइंड प्रेजुडाइज न हो और किसी से किया गया हो तो साफ सुथरा रह जाएगा उसमें। और यहाँ आने वाले में तो किसी को, जितने लोग हाजिर हैं, किसी का ऐसा खोटा मन है ही नहीं, इसकी तो हमें पता ही है। क्योंकि अगर मन खराब होता तो यहाँ क्यों आते, बोलो, जो बाहर बैठे हैं, मतलब घर के बाहर हो, नहीं तो हमारी सरला बहन बैठे उनके बारे में तो हम क्या बताएंगे। हाँ आगे।
हाँ, अब ये जो विपरीत विचार प्रकट करते हैं तो किसी को किसी अनुयोग का पक्ष हो जाता है, तो यहाँ अलग अलग पक्षियों की बात करेंगे। वहाँ वे जीव कौन से, जिनको अरुचि है, वे जीव प्रथमानुयोग चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग का केवल पक्ष करके इस करणानुयोग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। करणानुयोग के अभ्यास का निषेध करने वालों के यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ उनके चर्चा समाधान किया है कि वो क्या कहते हैं और उसका जवाब क्या है, सही बात क्या है, वो बात यहाँ बताएंगे। ये बहुत अच्छी चर्चा है, दोबारा जरूर इसको पढ़ना आप। उनमें से प्रथमान योग का पक्षपाती कहता है, पक्षपाती का अर्थ क्या है, ये प्रथमान, हाँ वो वही से उससे से कार्य होगा, ये दूसरों की कुछ आवश्यकता नहीं।
प्रथमान योग में जिन्हें विशेष इंटरेस्ट है और जो अन्य अनुयोग को
बेकार का समझता
कहते हैं, मतलब ये कोई गरज नहीं है, प्रथमानुयोग पढ़ो बहुत अच्छा है, वो कोई द्रव्यानुयोग बोलेगा द्रव्यानुयोग अच्छा है, तो यहाँ सबकी हाजिरी ली है, हाजिरी समझते हैं आप?
खबर ली है।
हाँ खबर ली, चलो ये आज की खबर आई।
तो प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है कि इस काल में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, ये पहले नक्की करता है, उसको पढ़ना नहीं है तो बुद्धिमंद है, तो स्कूल कॉलेज में जाने से तो वो तो घर में तो नहीं बैठता है, बाहर तो बुद्धि बहुत चलाता है, तो कहते हैं इस काल में बुद्धि बहुत मंद है, उनके तो ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में से कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक तरह से समझ कर पाप से डरकर धर्मानुराग रूप होगा, यानी पाप पुण्य की कथा बता दो और बस वो पाप छोड़कर पुण्य में लगेगा, धर्मानुराग रूप करेगा, इसलिए प्रथमान योग का उपदेश कार्यकारी है, ऐसे वो प्रश्नकर्ता हाँ बता रहे हैं, उसको कहते हैं। अब भी सभी जीव तो एक से नहीं हुए हैं, यानी सभी जीवों की बुद्धि मंद हो गई ऐसा तो नहीं कह सकते, उनकी हीनाधिक बुद्धि देखी जाती है, कोई इंटेलिजेंट है ज्यादा, कोई मतिमंद भी है, इसलिए जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना। बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आते, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं, तो भले उनके लिए आप तीर्थंकरों की कथा सुनाओ, उसका निषेध तो कोई नहीं कर रहा है। कर्णानुयोग के भी अभ्यासी अन्य अनुयोगों का निषेध नहीं कर रहे, तो जैसे सामने वाले जीव है उसको देखकर वैसा उपदेश दिया भी जाता है, यानी उसके लिए उपदेश देने के लिए कोई ना नहीं कह रहे। अथवा मंद बुद्धि भी सिखाने पर अभ्यास से बुद्धिमान होते दिखते हैं। क्या कहते हैं, स्कूल में बच्चे को डालते हैं, कितना जान रहा है, कुछ नहीं जानता है ना, वहां जाके रोज अभ्यास करता है तो सीख जाता है। तो मंद बुद्धि भी बारंबार कोई अभ्यास उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बातें सीख जाते हैं। तो मंद बुद्धि भी सिखाने पर अभ्यास से बुद्धिमान होते दिखते हैं, इसलिए जो बुद्धिमान है उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, और जो मंद बुद्धि है वे विशेष बुद्धिमानों से सामान्य विशेष रूप गुणस्थानादि का स्वरूप सीखकर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करे, यानी अभ्यास से वो भी जानने लगेंगे। हमने तो बच्चों को तक यह गुणस्थान आदि की बातें सिखाई थी और उन्होंने भी बहुत पिकअप की, और अन्य भी जो सामान्य बुद्धि वाले भी है इसमें रुचि लेकर अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें उनके भी ख्याल में आती है। ऐसे बहुत से हमारे पहचान वाले भी है कि जिन्होंने, देखो यहाँ की तो बात सामने बैठकर सीखने वालों की तो अलग है, लंदन जैसे वहां रहने वाले भी सीढ़ी में सुनते हैं, सामने सुनने का भी उनको मौका नहीं है, फिर भी वो सुनते हैं और फिर चर्चा भी करते हैं। अपूर्वकरण का नाम लेना है तो अपूर्वकरण ऐसा रुक रुक के बोलते हैं, फिर भी रुचि है, पंचलब्धि जैसा भी विषय वहां पढ़ते हैं, रुचि होना जरूरी है। यहां मंद बुद्धि कहते हैं कि अब जिसकी बुद्धि कुछ विशेष कम है, हीन है, ऐसे मंद बुद्धि कह रहे हैं, इस गोमटसार शास्त्र में तो गणित समस्या अनेक अपूर्व कथन द्वारा बहुत कठिन है ऐसा सुनते हैं। ये सुनने वाले ही बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि यह बहुत कठिन है। अभी आए थे वो जमशेदपुर से आए थे एक कपल, उन्होंने बताया कि ये तो हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के शिविर के बारे में, हमने वितराग विज्ञान जैन पथ प्रदर्शक वगैरह में हमने पढ़ा है, तो हमने तो निश्चित किया कि हम जाएंगे, तो हमारे वहाँ गांव में रहने वाले अन्य विद्वानों ने भी और अन्य लोगों में भी हमको ऐसा बताया, गोमटसार अपने बस की बात नहीं है, मत जाओ, फिर भी हम ढाढ़स करके आए हैं। और पहले ही दिन से उन्होंने बताना शुरू किया, नहीं बहुत सरल लग रहा है हमको। रब्बी भी कल भी फोन आया था ना उनका,
कल उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की वो डीवीडी भी मंगाई फोन करके।
तो कहते हैं ये गणित की समस्या में बहुत अपूर्व ऐसे कुछ कथन है जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, वो बहुत कठिन है ऐसा हमने सुन रखा है। हम इसमें किस तरह प्रवेश पा सकते हैं, ये हम आप सबका प्रश्न है ना, ये कठिन गणित है, हम कैसे समझेंगे, उनको तो कहते हैं।
देखो यहाँ टोडरमल जी आपको हमको कह रहे, क्या कह रहे, भय मत करना, पहले ढीले मत हो जाना कहते हाँ, ये सब बात अपने पे लिए ना हो, ये बाजू वाले के लिए नहीं, नहीं तेरे लिए, ये समझ ले।
देखो हम बच्चों को भी कैसे कहते, अरे डर मत, चलो चलो करके हम कैसे, तो देखो कितना हमें लाभ, जिसको कहते हैं ना कि जैसे माँ जैसे प्यार से समझा रहे, भय मत करना। इस भाषा टीका में गणित आदि का अर्थ सुगम रूप करके कहा है। ये उनकी विशेषता है कि वो बहुत भावार्थ के रूप में या अन्य भी टीका जो उन्होंने लिखी है अत्यंत सरल करके लिखी है, इसलिए प्रवेश पाना कठिन नहीं रहा। पुनश्च इस शास्त्र में कथन कहीं सामान्य है यानी स्थूल रूप कहीं है, कहीं विशेष है यानी और सूक्ष्म है, डिटेल में है, कहीं सुगम है कहीं कठिन है। वहां यदि सर्व अभ्यास बनता है तो अच्छा ही है, यानी सामान्य और विशेष सबको जान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बनता तो अपने बुद्धि के अनुसार जैसा बने वैसा ही अभ्यास करो। 10 बातों में से 2 बातें समझ में आई, मैं तो कहूंगी कि 100 में से 2 बातें समझ में आई तो भी बहुत अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसा अजब गजब का ग्रंथ है ये।
देखो यहाँ पर स्वयं पंडित जी अपने को ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ कहीं कठिन भी है, ऐसा नहीं बता देगा हर जगह सुगम है, ऐसा खाली खोटा खोटा लपेटबाजी नहीं कर रहे, सब बातें बताएं, कहीं सामान्य है कहीं विशेष है कहीं सुगम है कहीं कठिन है। वहाँ यदि सर्वाभ्यास बनता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनता है तो क्या कहते हैं, अखाड़ा छोड़ के भाग जाओ नहीं बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, अपने बुद्धि के अनुसार जैसा बने वैसा ही अभ्यास करो। लेकिन मैं तो कहूंगा अपना इतना सौभाग्य है कि यहाँ हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और हम सबको सभी बात समझ में आएगी, और नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हैं एक दूसरे को या इनको, तो आपको बात समझ में जरूर आएगी। और आगे क्या लिखा, अपने उपाय में आलस नहीं करना, ये तो अपने हाथ की बात है, दूसरा कोई सिखावे और जबरदस्ती करे ऐसी तो बात नहीं है। ये क्या कहते हैं, मैं मेरी भाषा में मैं जो दिख पढ़ रहा हूँ वो मेरे को दिख रहा है, आपको दिखता है कि नहीं देख लेना। कहते हैं रोज आने के लिए आलस मत करो, ऐसा लिखा, आपको क्या दिखता है मुझे मालूम नहीं है। आगे
देखो, अभी तो जमाना ऐसा आया है कि बहुत सरलता से हमें सभी मार्ग उपलब्ध हैं। आपके सामने हाथ में पुस्तकें हैं, हिंदी में हैं, हम तो ढूंढारी में पढ़े। कोई आपको समस्या है तो यहाँ सारे, आपके तो घर में ही अश्विन भाई, कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं।
अरे अपने अरविंद भाई भी है ना।
हाँ, ये अरविंद भाई, ये सब सारे नीचे बैठे, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम कुछ ज्यादा जानते हैं। अब कहते पुनश्च तूने कहा, प्रथमानुयोग संबंधी कथादिक सुनने से पाप से डरते हैं और धर्मानुराग रूप होते हैं, धर्म के प्रति अनुराग होता है। अब यहाँ तो पुण्य का उसे विशेष रुचि हो जाती है, पाप से लोग डरते हैं।
ये धर्मानुराग का अर्थ शुभराग रूप,
शुभराग
पुण्य राग रूप, पुण्य भाव रूप, ऐसा लेना। धर्म यानी वितरकता की बात नहीं है।
अब कहते वहां तो यानी ये कथाएं सुनकर तो दोनों कार्य शिथिलता सहित होते हैं। कौन से 2 कार्य, पाप से डरना और पुण्य में लगना। यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्यादिक विशेष जानने से, पुण्य के कारण इन डिटेल जानने से, पाप के कारण इन डिटेल जानने से, ये कर्म आदि की बात है ना, विस्तार से यहाँ ख्याल में आती है, पता चलता है, वे दोनों कार्य दृढ़ता से होते हैं, इसलिए इसका अभ्यास करना। अब ये पुण्य की बात करते हो तो कर्णानुयोग के अभ्यास में तो सातिशय पुण्य का बंध होता है, और यहाँ कोई पाप तो नहीं हो रहे। जितने काल हम कर्णानुयोग के अभ्यास में उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाता है, और वहां तो सही सही बातें हम जान रहे हैं, जो भगवान ने बताई है उसको जान रहे, उसमें तो भगवान की केवल ज्ञान की तो महत्ता आती ही आती है, और अपना उपयोग इसी में लगा रहता है, उस काल में तो राग द्वेष की उत्पत्ति कहीं अन्य अपना मन भटकता ही नहीं।
ये सातिशय पुण्य क्या होता है आपने जो बताया?
हाँ, ये जो साति अन्य जो साधारण पुण्य होते हैं और कोई होता है सातिशय पुण्य, तो सातिशय पुण्य के फल में हमें आगामी भी ऐसे ही संयोग प्राप्त होते हैं कि जो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें मिल जाए, उसको कहेंगे सातिशय पुण्य।
यानी आपको कहना है अतिशय सहित जो पुण्य है,
अतिशय सहित
सातिशय,
अतिशय ने उसकी विशेषता है।
सातिशय पुण्य आप अभी आप अब्जोपति हो तो बाद में खरबोपति होंगे, वो सातिशय पुण्य नहीं है क्या? आप कौन से पति हैं? पत्नी है। अच्छा ठीक। तो यहाँ तो कह रहे सातिशय पुण्य का अर्थ सच्चे देव गुरु शास्त्र का आपको दोबारा संयोग मिलेगा। ख्याल में आया? अभी हमारा नसीब ऐसा है कि हम भरत क्षेत्र में है, यहाँ साक्षात हमें भगवान के तो संयोग नहीं है, संपर्क नहीं है। क्या साक्षात की बात है, वैसे गुरु भी हमें कच्चित मिल भी जाए लेकिन बारंबार तो उनका समागम होना कठिन है। लेकिन अभी सच्चे शास्त्र भी उपलब्ध है और सच्चे शास्त्र बताने वाले भी उपलब्ध है, बस उसी का हमें अभी। अरे शास्त्र तो हमारे लिए 24 घंटा गुरु है भाई, गुरु तो जब मर्जी होगी जब उपदेश देंगे। यहाँ तो कभी रात को दिन में जब चाहो जब किताब खोले बैठो और अपना स्वाध्याय चालू करो, वो सातिशय पुण्य है। इस पुण्य को कोई पुण्य गिनता ही नहीं है। 10 रोल्स रॉयस की गाड़ी है बहुत पुण्यवान है। हा? अच्छा चलो।
अरे हमारे कोई पूर्व के महान पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे ग्रंथों का अभ्यास वो भी होगा, इसीलिए बिल्कुल है। पुण्य की रुचि के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये सहज रूप से हो जाता है। हमारा प्रयोजन तो पुण्य के पीछे भागना नहीं है, हमारा प्रयोजन तो अपने आप को
भी नहीं और पुण्य को इकट्ठा करना भी नहीं।
बिल्कुल मिला है। पहले किसी पुण्य का ऐसा उदय है कि ऐसी सच्ची और अच्छी बातें आपको सुनने को मिल रही।
मैं तो ऐसा कहूंगा अभी अपने यहाँ तो अधिकतर लोग जो मूल दिगंबर जैन नहीं है वे भी दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य भी कांजीव स्वामी से कुछ कम नहीं है। वो भी पैसे अन्य मती थे, वहां से उनके ये हाथ में आया और उन्होंने तो इतना पुरुषार्थ किया कि आत्मानुभूति हो गई। लेकिन हमें भी उतना ही और उनके सारे ग्रंथ हमारे पास है उपलब्ध रूप से, हम तो कहेंगे अपना नसीब अच्छा है। साथी से पुण्य के हिसाब से हो,
ये जन्म से कोई जैन नहीं होता है
ना।
ये गणधर कौन थे? अन्यमति थे ना, वैदिक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने यहाँ पूरे ग्रंथों की रचना तो उन्होंने सम्य दर्शन प्राप्त किया, मुनि हो गए सच्चे दिगंबर नग्न मुनि, और फिर उन्होंने ये सारा ग्रंथों का रचना वगैरह आदि का कार्य किया था। तो ये परंपरा से आज हमें ये उपलब्ध है, तो हम किस पंथ में कहाँ जन्मे उससे कुछ नहीं। अभी जैनी होकर भी इसका अगर अता पता नहीं है या तत्व में रुचि नहीं है तो वो नहीं के बराबर है। अभी हम आगे बढ़ेंगे।
नहीं, ये तो केवल सातिशय पुण्य की बात बताने के लिए मैंने बताया।
सही है,
इन अधिकता की बात नहीं।
इस प्रकार प्रथमानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अब चरणानुयोग का पक्षपाती कहता है ये चरणानुयोग ने कुछ क्रिया करेंगे तो फल मिलेगा, केवल बातों से क्या होता है। वो तो द्रव्यानुयोग के बारे में भी ऐसा कहता है चरणानुयोग का पक्षपाती। अब यहाँ करणानुयोग का जो निषेध कर रहा है, अभी पंडित जी के भाषा में हम समझेंगे कि इस शास्त्र में कहा हुआ जीव कर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही है, जितने कर्म बंधने हैं जितने सत्ता में पड़े हैं उसमें जो कुछ स्थिति अनुभाग होता है वो वैसा ही होता है, उसको जानने से क्या सिद्धि होती है, क्या फायदा। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस ऐसे कहने वाले भी है ना, अभी नहीं आ रहे आजकल। क्योंकि क्या कहते हैं, पहले नहीं जानते थे तो अच्छा था, अब जानने लगे कि इतने सारे कर्म बनते हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें होती तो हमें डर लगने लगा, तो नहीं जानते वही अच्छा था कहते हैं। तो कहते कर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही है, उसको जानने से क्या सिद्धि होगी। ये कब लगता है? करणानुयोग के अभ्यास में। वो दुनिया की खबरें सुनता है CNN या कोई जो न्यूज चैनल चलती है, वो कभी ऐसा नहीं होता जैसा है वैसा ही है। वो क्रिकेट मैच जो जैसी होनी है वैसा ही रिजल्ट आना है जो भगवान ने जाना है, तो वहां तो ऐसा नहीं कहता कि मैं क्यों जाना। जानने से क्या सिद्धि होती है? यदि हिंसादिक का त्याग करके व्रत का पालन किया जाए, उपवास आदि तप किया जाए। देखो लौकिक में भी समाज में आम तौर पर किसकी वैल्यू होती है, ये सब करने वालों की। क्या क्या कहते हैं, हिंसा आदि का त्याग करके व्रत का पालन किया जाए, ये कोरी क्रिया की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण सानवर्ती है, मुनिराज है, जो सच्चे भावलिंगी संत, उनके भी ये क्रियाएं तो होगी, समझ में आता है। परंतु ये चरणानियोग का पक्षपाती कह रहा है, उपवास आदि तप किया जाए, अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए, दान दिया जाए, वह विषय आदि से उदासीन हो जाए, इत्यादि शुभ कार्य किया जाए तो आत्महित हो। किसमें हित हो बताते हैं, शुभ कार्य में, शुभ क्रियाओं में आत्महित हो जाता है। इसलिए इनका प्ररूपण करने वाले चरणानुयोग का उपदेश करना, क्योंकि चरणानुयोग के ग्रंथ में इन क्रियाओं का विस्तार से वर्णन आता है, तो उन्हीं का उपदेश करो, ऐसा कहते हैं। उसको कहते हैं, अभी एक एक के लिए एक एक बिरुदावली बताइए। कहते हे स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि, हे स्थूल बुद्धि, यानी स्थूल बुद्धि है ने, ज्यादा सोचने की बात नहीं, बस जैसा उतना ही है, खास नहीं है। तूने व्रतादिक शुभ कार्य कहे, वे करने योग्य ही है। पहले उसकी बात रखते हैं, फिर बाद में वो सच्ची बात निकालेंगे। तो व्रतादिक तो करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, परंतु वे सर्व, कौन से, वे सभी व्रतादिक, अभी ऊपर कहते हैं व्रतादिक है, उपवास आदि है, और फिर तप है, पूजा है, भक्ति है, दान है, सब है, वो सभी क्या है, सम्यक्त के बिना ऐसे है जैसे अंग बिना बिंदी। हमारे पास 7-0 है, वैल्यू कितनी उसकी, 0, उसके पहले 1 लगा लो, उसके बिगिनिंग में 1 रख दो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करोड़, है ना। तो यहां वैसे कहते हैं कि ये सब तो किए और सम्यक्त्व न हो तो उनकी वैल्यू 0 है, उसको कहते हैं अंक बिना बिंदी। और जीवादि का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसा है जैसे वांछ का पुत्र, क्या कहते हैं, यानी जीवादि का स्वरूप नहीं जाने, ये जीव जीव क्या होता है, जीव तत्व या जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है, कुछ मालूम नहीं है, और हमें तो सम्यक्त्व चाहिए। तो उसके लिए उदाहरण दृष्टांत क्या दिया, वांझ यानी जिसके पुत्र नहीं हो सकता, इसे वंध्या स्त्री जो है उसको कहेंगे बांझ, तो बांझ का पुत्र यानी जिसके पुत्र ही नहीं हो सकता, ऐसे स्त्री को, ऐसे उसमें योग्यता ही नहीं है, तो उसको पुत्र होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ही नहीं कभी। ऐसे ही जीवादिक का जाना नहीं और सम्यक्त हो जाए, ये 3 काल में नहीं बन सकता।
देखो हम किसी एक गांव में गए थे, वहां जो लोग स्वाध्याय में आया करते थे वो सभी ही अपने को स्वयं सम्यक दृष्टि मानते थे। क्यों साहब आप सम्यक दृष्टि कैसे हो गए, क्या हमने तो लघु सिद्धांत परिषदा पढ़ ली, 7 तत्वों का अभ्यास किया, हाँ सर जीव तत्व अजीव तत्व ठप 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 ठप, 7 ही तत्वों का यथार्थ तहा नाम बताया, और फिर अंतरंग में ऐसी बुद्धि है कि आश्रव से संवर होता है, तब ऐसे को सम्यक दृष्टि कहना क्या नहीं कहना। और एक गांव में हमारे यशपाल जी गए थे, वहां सब लोगों से पूछा कि आपका कौन सा गुणस्थान है, तो सभी ने बताया 4था। कैसे कहते हो, तो कह रहे हम सच्चे देवगुरु शास्त्र को ही भजते हैं, अन्य किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो दूसरे दिन पूछा कि भाई कल क्यों नहीं आए, तो बोला हमारे यहाँ क्या बोलते वो अपने जो 10 लक्षण के दिन होते हैं ना, उसी समय गणपति के दिन होते हैं, वो हमारे घर में गौरी आई है ना, तो उसके लिए हमको नहीं आना पड़ा। बोले यही सब बातें बताते हैं अपने को, यानी जिसके सम्यक दर्शन है उसके तीन बातें तो अवश्य होती है निमित्त रूप से, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, सच्चे देवगुरु शास्त्र की यथार्थ प्रतीति, और स्वपर भेद विज्ञान का या स्वपर का सही मान्यता, और आत्मानुभूति, चारों साथ ही बात है, चारों बातें साथ है। ये ऐसी बात है कि यहाँ कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, हा? और मान रहे कि हमको सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसको क्या कहा, जैसे बांझ का पुत्र। ये समझ में है, बांझ का पुत्र समझ में है बेटा? और आगे जो लिखा है कि अंक बिना बिंदी, वो समझे कि नहीं, एकड़ा बिना मिंडा, अभी जल्दी आया ना।
इसलिए जीवाधिक जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। देखो कितने बारंबार इसकी प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि जीवाधिक को नहीं जानेंगे तो सम्यक तो नहीं होगा, और सम्यक तो नहीं होगा तो कोई आगे चलकर वो अंतरंग स्थिरता वाला चारित्र ही नहीं होगा। तथा तूने जैसे व्रतादिक शुभ कार्य कहे और उनसे पुण्यबंध होता है, वैसे जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है वो प्रधान शुभ कार्य। क्या कहते, व्रतादिक क्यों कर रहा है? शुभ शुभ भाव है, पुण्य का कारण है। तो ये जो जीवादिक का स्वरूप हम जानेंगे यहाँ, यानी अभ्यास करेंगे, ज्ञानाभ्यास करेंगे, तो वो तो प्रधान यानी मुख्य, ये तो हायर क्वालिटी का पुण्य है। कहते हैं क्या, कहा प्रधान शुभ कार्य है, इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। वो व्रतादि वो भी अज्ञान पूर्वक किए, वो तो ऑर्डिनरी कुछ पुण्य बंधेगा, और यहाँ तो विशेष खास पुण्य बंधेगा, सातिशय पुण्य का बंध होगा। पुनश्च व्रतादिक में भी ज्ञानाभ्यास की ही प्रधानता है। क्या कहते हैं, ये व्रत किए उन्होंने, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा चलना वैसा चलना, क्यों पता नहीं, बस हमने आज्ञा मान ली कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। तो कहते ज्ञानाभ्यास सहित अगर व्रत होते हैं, क्या ज्ञानाभ्यास, कहाँ जीवों की अधिकता है, कहाँ जीव ज्यादा रहते हैं, वो निगोद कहाँ है, अनंत जीव कहाँ पाए जाते हैं, वो किस काल में उत्पन्न होते हैं, आदि बातें जानेंगे तो उनकी हिंसा से बच सकते हैं। वही बात कहते हैं, उसे कहते हैं जो जीव प्रथम जीव समासादिक, जीव समास है ना, ये जो जीव जो है संसारी जीव, कोई एकेंद्रीय है, द्विंद्रीय है, तीनद्रीय है, उनमें भी पर्याप्त है अपर्याप्त है, इसे जो सारे भेद है उसको कहते हैं जीव समास, जिसकी बात आगे विस्तार से आने वाली है। तो जीव समासादिक जीवादिक के विशेष जानकर, यानी जीव कौन कौन सी पर्यायों में रहते हैं इसको हम डिटेल में जानेंगे, पश्चात यथार्थ ज्ञान करके हिंसादिक का त्याग करके व्रत धारण करता है वही व्रती है। तथा जीवादिक के विशेष जाने बिना, यानी जीव कहाँ रहते हैं कौन से पर्याय में है वो जाने बिना, कथनचित हिंसादिक के त्याग से अपने को व्रती मानता है, यानी कोई विशिष्ट त्याग करने से अपने को व्रती मान लिया उसने, वह व्रती नहीं है। क्या कहते हैं, हिंसादिक का त्याग दो किया, आचरण अन्य व्रतियों जैसे कर रहा है, फिर भी व्रती नहीं है। इसलिए व्रत पालन में ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, यानी ये जीव कहाँ रहते हैं, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं चलती है और उनकी हिंसा कैसे हम टाल सकते हैं, इसका अगर ज्ञान न हो और बस कोरी क्रिया करें तो उससे तो कोई लाभ नहीं है, वो तो अज्ञानता पूर्वक किया हुआ कुछ विशिष्ट आचरण है।
यहाँ जो लिखा है व्रत पालन में ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, यानी ज्ञानाभ्यास यानी ज्ञान का अभ्यास नहीं,
इन ग्रंथ का ज्ञान।
हाँ। देखो बात ऐसे, कल हमने अष्टपहाड़ में देखा था ना कि कोई एक बहुत बड़ी सेठानी स्वयं कुछ कांड रही थी, तो वहां से वो पड़ोसन जा रही थी तो उसने देखा, अरे वो तो भूसे को कांड रही है, ये बोलती इतनी बड़ी पैसे वाली स्त्री है और ये भूसे को कांड दी, इसमें से तो कुछ जरूर निकलने वाला होगा, तो उसने बाहर जाते देखा तो वहां भूसा डाला हुआ, तो उठा के लेके गई, जाके कूटने लगी, कांडने लगी, तो वैसा कहते हैं बिना जाने केवल व्रत करने से वो व्रति नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये बात हम कल देखेंगे।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन हो सदा देत हो। अश्विन भाई।